पृष्ठ संख्या 386 आवासीय भवन। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिसके तीन या चारों ओर चार पांच कमरे, एक रसोई घर और एक स्नानाघर बना होता था। अधिकांश घरों में एक कछुआ भी होता था। संपन्न लोगों के घरों में एक कुआं भी होता था। संपन्न लोगों के घरों में शौचालय भी होते थे। कतिपय बड़े आकार के भवनों में 30 कमरे तक मिले हैं। भवनों में मिली सीढ़ियों से इंगित होता है कि 2 मंजिले भवन भी बनते थे। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क में न खुलकर पिछवाड़े की ओर गली में खुलते थे। सड़क की ओर खिड़की और रोशनदान भी नहीं होते थे। मिट्टी कूटकर कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें बिछाकर भवनों के फर्श बनाए जाते थे। कुछ इमारतों की दीवारों पर पलस्तर के भी साक्ष्य मिले हैं। भवनों की छतों के विषय में स्पष्ट साक्ष्यों का अभाव है। अनुमान किया जाता है कि छतें समतल होती थी। छतों पर घास फूस बिछाकर ऊपर से मिट्टी छाप दी जाती थी। रेखाचित्र 12 मोहनजोदड़ो नगर क्षेत्र भवन विन्यास सौजन्य सारसीना 1978 पृष्ठ संख्या 387। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग भवनों के निर्माण के लिए किया गया है। लोथल रंगपुर तथा कालीबंगा के भवनों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का ही उपयोग किया गया है। कालीबंगा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग केवल नालियों कुओं तथा दहलीजों के निर्माण के लिए किया गया है। कई आकार प्रकार की ईंटों का उपयोग होता था, किंतु सुप्रचलित आकार 28x14x7 सेमी अथवा लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई में 4:2:1 का अनुपात होता था। सड़कें। सिंधु सभ्यता की वास्तुकला में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सड़कों का निर्माण एक सुनियोजित योजना के अनुसार किया जाता था। मुख्य मार्गों का जाल प्रत्येक नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करता था। एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें मोहनजोदड़ो के नगर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण को फैली हुई थी। मोहनजोदड़ो में मुख्य मार्ग 9.15 मीटर तथा गलियां औसतन 3 मीटर चौड़ी थी। कालीबंगा में प्रमुख सड़कें पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई थी। कालीबंगा में मुख्य मार्ग 7.20 मीटर और रास्ते 1.80 मीटर चौड़े थे। सड़कें कच्ची होती थी। सड़कों की स्वच्छता एवं सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कूड़ा कचरा फेंकने के लिए सड़कों के किनारे या तो गड्ढे बने होते थे अथवा कूड़ेदान रखे रहते थे। नालियां। सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कों तथा नालियों के जल एवं मल के निकास के लिए पकी हुई ईंटों की बनी हुई नालियों की व्यवस्था थी। इनकी चौड़ाई और गहराई आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाती थी। कुछ नालियां 23 सेमी चौड़ी तथा 50 सेमी तक गहरी थी, किंतु अन्य इससे दुगनी चौड़ी और गहरी थी। प्रायः नालियों को बड़े आकार की पकी हुई ईंटों से ढका जाता था। बड़ी नालियां पत्थर की पट्टियों से ढकी हुई मिली हैं। बरसाती और स्नान घरों के पानी और घरों के मलमूत्र के बहने के लिए मलकूप मैनहोल्स बने हुए थे। घरों की नालियां सड़क के किनारे की बड़ी नालियों में गिरती थी। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में ऐसी नालियां मिली हैं जो किसी नाली के स्थान पर सोखता गड्ढों में गिरती थी। नगर के बाहर नालियां अंत में कहां पर गिरती थी, इसके विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। नालियों की संभवतः समय समय पर सफाई की जाती थी। मोहनजोदड़ो में नालियों के किनारे मिले रेत के ढेर इसके साक्ष्य है। कला। सिंधु सभ्यता की कला के अंतर्गत प्रस्तर धातु एवं मृण मूर्तियों का उल्लेख किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त मुहरे, मनके और मृदभांड एवं लघु कलाएं इनके सौंदर्य को इंगित करती हैं। ये कलाएं सिंधु सभ्यता के लोगों को सुरुचि की परिचायिका हैं। मेसोपोटामिया और मिस्र की मूर्तिकला से सिंधु सभ्यता की मूर्तिकला की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की मूर्तिकला के पृष्ठ संख्या 388 विषय में हमारी जानकारी अभी भी अधूरी है। सिंधु सभ्यता की प्रस्तर तथा धातु की उत्कृष्ट मूर्तियाँ तत्कालीन तकनीकी प्रगति की परिचायिका है। निर्मित मूर्तियों तथा विस्मयकारी मुहरों का निर्माण अत्यंत कुशलता के साथ किया गया है। प्रस्तर मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो से एक दर्जन पाषाण मूर्तियाँ मिली हैं तथा हड़प्पा से 2-3 प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अधिकांश पाषाण मूर्तियाँ खंडित हैं और अपेक्षाकृत छोटे आकार की हैं। ज्यादातर मूर्तियाँ बैठी आसन अथवा खड़ी स्थानक मुद्रा में हैं। चित्र 13 मोहनजोदड़ो पुरुष प्रस्तर मूर्ति सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 12 प्रस्तर मूर्तियों में से 5 गढ़ी वाले टीले के एचआर क्षेत्र से मिली हैं, जिससे उस क्षेत्र का विशिष्ट महत्व इंगित होता है। इन मूर्तियों में कतिपय विशेष उल्लेखनीय हैं। सिखड़ी की बनी हुई 19 सेमी लंबी खंडित पुरुष मूर्ति जो तिपतिया अलंकरण से युक्त शाल ओढ़े हुए है, वह डी के क्षेत्र से मिली है। इसके हाथ भी टूटे हुए हैं। इसकी दाढ़ी विशेष सवरी हुई है। दाढ़ी के बाल पुरुष प्रस्तर में लकीर काट कर बनाए गए हैं और मूछें साफ हैं। केस पास पीछे की ओर सवार कर एक फीते से बांधे हुए हैं। जड़ाऊ काम का स्पष्ट संकेत है। कान छोटे एवं गोल है। शाल के बायां पृष्ठ संख्या 389 कंधा ढका है तथा दाहिना कंधा खुला है। दाहिने भुजा में जो भुजबंध है उसमें एक आलंकारिक वृत्त बना हुआ है। मोहनजोदड़ो से लगभग 17.8 सेमी मोहनजोदड़ो से लगभग 17.8 सेमी लंबा चूना पत्थर पर बना हुआ पुरुष का एक अन्य सिर भी मिला है। यद्यपि यह मूर्ति भी दाढ़ी युक्त और मूछें साफ किए हुए बनाई गई हैं, सिर के बालों को केशबंध से बांधे हुए हैं, तथापि इसमें पहली मूर्ति की तरह की कारीगरी का अभाव है। अल्बेस्टर की बनी हुई 29.5 सेमी ऊंची बैठे हुए व्यक्ति की जो मूर्ति मिली है, उसे कमरे में पारदर्शी वस्त्र पहने हुए दिखलाया गया है। उसे कमर में पारदर्शी वस्त्र पहने हुए दिखलाया गया है। बायां घुटना ऊपर उठा हुआ दिखलाया गया है। जिस पर बायां हाथ रखा हुआ है, उसका सिर खंडित है। मोहनजोदड़ो से मानव मूर्तियों के अतिरिक्त पत्थर की बनी हुई कतिपय पशु मूर्तियां भी मिली हैं। चूना पत्थर पर बनी एचआर क्षेत्र से प्राप्त भेड़ा की मूर्ति लगभग 12 सेमी ऊंची है। कलात्मक दृष्टि से उल्लेखनीय वह मूर्ति है जो भेड़ा और हाथी और संयुक्त कंपोजिट है। चूना पत्थर की यह मूर्ति लगभग 25 सेमी ऊंची है। शरीर और सिंह भेड़ा के और सूंड हाथी का है। यह मूर्ति डी के क्षेत्र से प्राप्त हुई है। इससे मिलती जुलती संयुक्त आकृतियां मुहरों पर प्राप्त होती हैं। चित्र 14 मोहनजोदड़ो भेड़ा एवं हाथी की संयुक्त मूर्ति सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। हड़प्पा से जो 3 प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं, वे तकनीक की दृष्टि से सिंधु सभ्यता की मूर्ति परंपरा से नितांत भिन्न हैं। इन मूर्तियों की गर्दन तथा कंधों में छेद हैं, जिनसे यह इंगित होता है कि सिर एवं हाथ अलग से जोड़े गए थे। ऐसी स्थिति में इनकी स्थिति विवादास्पद एवं अनिश्चित है। माधव स्वरूप वत्स द्वारा किए गए उत्खनन से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर पर बनी हुई 9 सेमी ऊंची एक नवयुवक पृष्ठ संख्या 390 चित्र 15 हड़प्पा पुरुष प्रस्तर धड़ सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मूर्ति है, जिसका मात्र धड़ बचा है। हाथ पैर खंडित है। मूर्ति नग्न है। इस मूर्ति में अद्भुत मांसलता है। मूर्ति खड़ी हुई मुद्रा में है। इसके पिन स्कंदों तथा संतुलित नितंबों की रेखाओं से मूर्तिकला की विकसित अवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। हड़प्पा की दूसरी मूर्ति काले रंग के सिलेटी पत्थर पर निर्मित है। यह 10 सेमी चित्र 16 हड़प्पा नृत्यरत पुरुष प्रस्तर मूर्ति सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। पृष्ठ संख्या 391 ऊंची है। यह मूर्ति नित्यरत किसी नवयुवक की मानी जाती है। इसका दाहिना पैर भूमि पर स्थित है तथा बायां पैर ऊपर उठा हुआ है। कमर में ऊपर का हिस्सा बाईं ओर को घुमा हुआ है। दोनों हाथ नृत्य की मुद्रा में फैले हुए हैं। धातु की मूर्तियां। सिंधु घाटी के मूर्तिकार धातु अयस्कों को पिघलाने और दो धातुओं के संयोग से मिश्र धातु बनाने की कला से पारंगत थे। धातु के बनी हुई मूर्तियां मुहरे इसके प्रमाण हैं। मोहनजोदड़ो चानुदड़ो लोथल तथा कालीबंगा से कांस्य मूर्तियों की कांस्य धातु की मूर्तियां अभी तक मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियां बंद साचे में ढाल कर बनाई गई थी। चित्र 17 मोहनजोदड़ो नर्तकी की कांस्य मुक्ति मूर्ति सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र से के एक घर से प्राप्त 14 सेमी लंबी नर्तकी की कांस्य मूर्ति विश्व विख्यात है। इस मूर्ति के पैरों के केवल नीचे के खंडित भाग को छोड़कर शेष भाग पूर्णतः सुरक्षित है। बायां पैर कुछ आगे बढ़ा हुआ है, दाहिना पैर सीधा है। इसकी कमनीय देहयष्टि, बड़ी बड़ी आंखें तथा नारी सुलभ मुस्कान उल्लेखनीय है। सहज भाव से नृत्य करती हुई। पृष्ठ संख्या 392। इस युवती का कंधे से कलाई तक चूड़ियों से भरा हुआ है। बायां हाथ आगे को झुके बाएं घुटने पर टिका हुआ है। बाजूबंद तथा कलाई में दो दो चूड़ियों से युक्त दाहिना हाथ कटी पर अवलंबित है। गले में उसके एक कंठा हार है जिस पर 3 लटकने हैं। आभूषणों को छोड़कर मूर्ति बिल्कुल नग्न है। इसकी केशराशि को कलात्मक ढंग से सवारने के बाद एक बेड़ी में बांधकर दाहिने कंधे पर लटकती हुई छोड़ दिया गया है। इस कांस्य मूर्ति की सहज भंगिमा, भाव चेष्टा, अंगों प्रत्यंगों की अभिराम भंगिमाएं सब नृत्य क्रिया की सूचक हैं। मोहनजोदड़ो के डीके क्षेत्र से प्राप्त दूसरी नारी कांस्य मूर्ति कलात्मक दृष्टि से सामान्य कोटि की है। उपलब्ध कांस्य की सजीव पशु मूर्तियों में भैंसा और भेड़ा की मूर्तियां हैं। चानुदड़ो से प्राप्त बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी उल्लेखनीय है। लोथल से प्राप्त बैल, कुत्ता, खरगोश और चिड़िया की तांबे की मूर्तियों में से कुत्ते की मूर्ति कलात्मक दृष्टि से सुंदर कही जा सकती है। तांबे की जो कतिपय मुहरें मिली हैं उन पर हाथी, गैंडा, बैल तथा बाघ आदि के चित्र बने हुए हैं। मिट्टी की मूर्तियां। सिंधु सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियां प्रायः सभी स्थानों से मिली हैं। ये संख्या में भी काफी हैं। मृण मूर्तियों को लोक कला के अंतर्गत रख सकते हैं। पुरुषों और पशु पक्षियों की मूर्तियों का मुख्य रूप से निर्माण किया गया है। सांचे में ढालकर बनाई गई कतिपय मृण मूर्तियों के अपवाद को छोड़कर अधिकांश मूर्तियां हाथ से बनाई हुई हैं। मानव मृण मूर्तियां ठोस हैं, जबकि पशु पक्षियों की मूर्तियां प्रायः खोखली हैं। यद्यपि नर एवं नारी दोनों की मृण मूर्तियां मिली हैं, तथापि नारी मृण मूर्तियां संख्या से अधिक हैं। मोहनजोदड़ो के डीके क्षेत्र और अन्नागार क्षेत्र से पुरुष मृणमूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें लंबी नाक, सामान्य एवं ढलुबा चिबुक, ठुट्टी चिपकाकर बनाई गई आंखें तथा किसी चीज से चीर कर बनाया गया मुख मिला है। नारी मृणमूर्तियां हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानुदड़ो आदि से मिली हैं। हरियाणा के बड़ावली के अपवाद को छोड़कर जहाँ से मिट्टी की दो मृण मूर्तियां मिली हैं, भारत के राजस्थान, गुजरात आदि के सिंधु सभ्यता के स्थलों की खुदाई से स्थिर मृण मूर्तियां अभी तक नहीं मिली हैं। विभिन्न आभूषणों से सजी धजी इन मूर्तियों के पयोधर पीन और नितंब पृथुल बनाए गए हैं। घुटनों के नीचे ये प्रायः नग्न हैं। हाथ से बनी इन मूर्तियों के रूपों में विविधता मिलती है। इनके अंग प्रत्यंग आभूषण आदि गीली मिट्टी से हाथ से बनाए गए हैं। चुटकी से दबाकर नाक का निर्माण किया गया है। तृण से चीर कर आँखें तथा मुंह बनाए गए हैं। कभी कभी अलग से मिट्टी चिपकाकर आँखें बनाई गई हैं। आभूषण ऊपर से मिट्टी चिपका कर बनाए गए हैं। गले के कंठहार, कानों के झुमके, कमर की करधनी अलग से मिट्टी चिपकाकर बनाई गई हैं। पंखे के आकार की शिरो वेशभूषा विशेष रूप से पृष्ठ संख्या 393, चित्र 18, मोहनजोदड़ो, नारी मृण मूर्तियां, सौजन्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दर्शनीय है। गोद में अथवा दुग्ध पान कराते हुए शिशु का अंकन इनमें मिलता है। बनाने के बाद धूप में सुखाकर इन्हें आग में पकाया जाता था। नारियों की इन मृणमूर्तियों को धर्म अथवा पूजन से संबंधित माना जाता है। ये संभवतः प्रजनन एवं उर्वरता के अनुष्ठान से संबंधित मातृ देवी की मृणमूर्तियां थी। मिस्र, मेसोपोटामिया आदि में भी प्राचीन काल में मातृशक्ति की उपासना काफी लोकप्रिय थी। सिंधु सभ्यता की मिट्टी की बनी वस्तुओं में प्रधानता उन खिलौनों की है जो पशु पक्षियों आदि के रूप में मिलते हैं। पशुओं में बैल, भैंसा, भेड़ा, बकरा, कुत्ता, हाथी, बाघ, गैंडा, भालू, सुअर, खरगोश, बंदर आदि की मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृषभ की बलिष्ठ मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी की वृषभ मूर्ति भी अपने आप में अद्वितीय है। डील वाले बैल की पृष्ठ संख्या 394, चित्र 19, मोहनजोदड़ो, पशु पक्षी मृणमूर्तियां, सौजन्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तुलना में बिना डील वाले बैल की मृणमूर्तियां अधिक संख्या में मिली हैं। सर्वथा अभाव है तो गाय एवं घोड़ों की मृणमूर्तियों का। गिलहरी, सर्प, कछुआ, घड़ियाल तथा मछली की भी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। पक्षियों में मोर, तोता, कबूतर, बतख, गौरैया, मुर्गा, चील और उल्लू की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पक्षियों के स्वाभाविक रंगों के अनुरूप उपयुक्त रंगों के रंगने के भी साक्ष्य मिले हैं। खिलौना गाड़ियों के पहिए ठोस होते थे। इक्के तथा सीटियां भी बनाई जाती थी। पाकिस्तान के चोलिस्तान तथा भारत के हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बड़ावली से खेत की जुताई में प्रयुक्त होने वाले हल्के मिट्टी के खिलौने के प्रतिदर्श मिले हैं। पृष्ठ संख्या 395। मुहरे सिंधु सभ्यता की रूपायित कला के क्षेत्र में मुहरों का महत्वपूर्ण स्थान है। मुहरों पर मूर्तिकला के विकसित रूप के दर्शन होते हैं। मुहरों का आकार मुख्यतः चौकोर या आयताकार है। इन पर अत्यंत तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म उपकरणों से वृषभ, हाथी, गैंडा, बाघ की मूर्तियों, पत्तियों, टहनियों आदि का अत्यंत बारीकी से निर्माण किया गया है। यह कार्य सहज स्वाभाविक रूप से नहीं बल्कि उल्टे रूपायन द्वारा किया गया है, जिससे मुद्रित करते समय मुहर वस्तु पर सीधी उभरे। मुहरे प्रायः चित्र 20, मोहनजोदड़ो, बैल एवं गैंडा, सौजन्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। सिंधु सभ्यता के नगरों और कस्बों के टीलों से ही अभी तक मिली हैं। इनकी संख्या अब तक कुल मिलाकर 3000 से ऊपर पहुंच गई है। इनमें से लगभग 2040 अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। लगभग 68% मुहरे मोहनजोदड़ो से, 19% हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। कुल मिलाकर केवल 13% शेष अन्य सभी जगहों से मुहरे मिली हैं। मुहरे अधिकांशतः सीलखड़ी की बनी हुई हैं। काचली मिट्टी, गोमेद, चर्ट तथा मिट्टी की बनी हुई मुहरे भी मिली हैं। लोथल और देशलपुर में पुर से तांबे की बनी मुहरे भी मिली हैं। पृष्ठ संख्या 396। सैंधव सभ्यता की आयताकार मुहरे अत्यंत छोटे आकार की है, जो 20 से 30 मिमी आकार की हैं। इनमें से बहुसंख्यक मुहरों के अग्रभाग पर किसी पशु का अंकन तथा प्रत्येक पर संक्षिप्त मुद्रा लेख उत्कीर्ण मिलता है। सिंधु सभ्यता की एक मुहर पर गल कंबल युक्त डीलदार वृषभ का अंकन है तथा छोटा सा मुद्रा लेख है। वृषभ पौरुष का द्योतक था। अनेक मुहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। पृष्ठ भाग में छेददार एक घुंडी मिलती है जिसका उपयोग मुहर को लटकाने के लिए होता रहा होगा। मुहरों का उपयोग अनुबंधों से संबंधित दस्तावेजों, पत्रों तथा व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर छाप लगाने के लिए होता रहा होगा। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा लोथल से प्राप्त मुद्रांकों, सीलिंग्स पर एक ओर सैंधव लिपि से युक्त मुहर की सीधी छाप है तथा दूसरी ओर भेजे जाने वाले माल का निशान अंकित है। मुहरों पर जो अनेक पशु आकृतियां खड़ी हुई है उनमें से सभी पूजा परक नहीं है। हाथी, गैंडा, एक श्रृंगी पशु तथा भैंसा के आगे कभी कभी नाद की तरह की आकृति बनी हुई मिलती है, लेकिन डीलदार बैल के आगे किसी भी मुहर में अभी तक नाद की आकृति बनी हुई नहीं मिली है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनमें से कतिपय आकृतियों का निर्माण उनके स्वामियों की इच्छा अनुसार किया गया होगा। इन मुहरों पर अंकित कतिपय विशिष्ट आकृतियों का उल्लेख किया जा सकता है। एक मुहर पर तीन सिरों वाले एक संयुक्त पशु का अंकन है जिसका एक सिर हिरण का मुख्य शरीर, एक श्रृंगी पशु का और तीसरा सिर मेंढा का है। एक मुहर पर एक व्यक्ति दो भागों से लड़ता हुआ दिखलाया गया है। एक अन्य मुहर में व्याघ्रवत पशु से लड़ते हुए एक पशु मानव का दृश्य अंकित है जिसका चेहरा मनुष्य का है परंतु उसके खुर, सिंह और पूंछ हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है। सात अक्षरों का मुद्रा लेख अंकित है। इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन में बैठे हुए दिखलाया गया है। उसके सिर में सिंह है तथा कलाई से कंधे तक उसकी दोनों भुजाएं चूड़ियों से लदी हुई हैं। उसके दाहिने ओर एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडा एवं एक भैंसा खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे दो हिरण खड़े हुए दिखलाए गए हैं जिनमें एक की आकृति खंडित है। एक अन्य मुहर में नर एवं नारियों की कुल मिलाकर सात आकृतियां अंकित है। मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव की आकृति अंकित एक एक मुहरें मिली हैं। एक मुहर में पीपल की एक शाखा से एक श्रृंगी दो पशुओं को निकलते हुए दिखलाया गया है। ताम्र पट्टिकाएं मुहरों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई से कई ताम्र पट्टिकाएं, कॉपर टैबलेट्स मिली हैं जिन पर एक तरफ मुद्रा लेख खुदा हुआ है तथा दूसरी ओर सैंधव मुहरों पर मिलने वाले प्रतीक बने हुए हैं। कुछ बाद की पट्टिकाओं पर मछली, मगर तथा अन्य पर बकरी एवं मृग का चित्र बना हुआ मिलता है। पृष्ठ संख्या 397, रेखा चित्र 21, मोहनजोदड़ो ताम्र पट्टिकाएं सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मनके सिलखड़ी रेखांकित कर केतन गोमेद कांचली मिट्टी शंख सीप हाथी दांत मिट्टी सोने चांदी एवं तांबे पर निर्मित ढोलाकार अंडाकार अर्धवृत्ताकार तथा सखंड सेगमेंटेड मनके मिले हैं। मनके कलात्मक दृष्टि से उल्लेखनीय है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा लोथल नगवाड़ा तथा चानूदड़ो आदि से काफी बड़ी संख्या में मनके मिले हैं। चानूदड़ो तथा लोथल से मनके बनाने वाले शिल्पियों की कार्यशालाएं अथवा उद्योगशालाएं प्राप्त हुई हैं। इन स्थानों से जो मनके मिले हैं उनमें से कुछ पूर्ण निर्मित हैं, कतिपय अर्ध निर्मित है तथा बहुत से निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। लिपि सैंधव लिपि अधिकांशतः मुहरों पर खुदी हुई है। कालीबंगा, सुरकोटदा और बड़ावली से मिट्टी के बर्तनों के कतिपय टुकड़ों पर सिंधु लिपि उत्कीर्ण मिली है। A.H. दानी नामक विद्वान के अनुसार इस लिपि में लगभग 537 अक्षर आकृतियां सिंबल्स हैं। सैंधव लिपि चित्राक्षर लिपि है। सैंधव लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर की लिखी जाती थी। मिश्र की ग्लिफिक लिपि की अनुरूपता और सेंधव मुहरों में सामान्यतः पशुओं के दाहिनी ओर मुख होने के आधार पर प्रायः यह माना जाता है कि यह लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर उत्कीर्ण चिन्ह पृष्ठ संख्या 398 अपने पार्श्ववर्ती दाहिने चित्र को काटते या आच्छादित करते हैं। बीबी लाल ने इस नवीन साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि सैंधव लिपि के लेखन की दिशा दाहिनी ओर से बाईं ओर को थी। चित्र 22 मोहनजोदड़ो सैंधव लिपि सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इस लिपि को पढ़ने के अनेक प्रयास हुए हैं, किंतु अभी तक इसको संतोषजनक ढंग से पढ़ा नहीं जा सका है। इस संबंध में अनेक कठिनाइयां हैं। इस लिपि का स्वरूप शुरू से अंत तक प्राय एक जैसा बना रहता है, जिसके कारण लिपि में प्रयुक्त चिन्हों के विकास की जानकारी प्राप्त करना कठिन है। लेख बहुत छोटे हैं, 5 से 7 चिन्ह मिलते हैं। सबसे लंबे लेख में भी कुल मिलाकर 17 अक्षर आकृतियां हैं। अभिलेख 3 पंक्तियों से अधिक लंबे नहीं हैं। अपनी समकालीन किसी विदेशी लिपि से साम्य नहीं है। भारत के ऐतिहासिक काल की लिपि से अलग थलग है। लिपि पढ़ने के प्रयासों के 2 वर्ग हैं। प्रथम वर्ग इसको द्रविड़ लोगों से जोड़ता है। द्वितीय वर्ग भारोपी लोगों से संबंधित बतलाता है। फादर हेरास फिनलैंड के आस्को परपोला, रूस के कोनोरोजो तथा भारतीय आईडी महादेवन आदि इसको द्रविड़ियन मानते हैं। प्राणनाथ बीएम बरुआ, एसआर राव एवं फतेह सिंह आदि विद्वान इसको भारोपीय मानते हैं। दोनों ही वर्गों के वाचन में अनेक विसंगतियां हैं। पृष्ठ संख्या 399 मृत भांड सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तन मुख्यतः लाल अथवा गुलाबी रंग के हैं, जिनके ऊपर लाल रंग का चमकदार लेप किया गया था। मोहनजोदड़ो के निचले स्तरों से प्राप्त कतिपय पात्र अपने चमकीलेपन विट्रियस ग्लेस के कारण अत्यंत कलात्मक लगते हैं। अधिकांश पात्र चाक पर बने हुए हैं, केवल थोड़े से रेखाचित्र 23 मोहनजोदड़ो मृदभांड 300 पृष्ठ संख्या 40 हाथ से बने हुए नमूने मिले हैं। चित्रित एवं सादे दोनों प्रकार के पात्र प्राप्त होते हैं। अलंकरण अभिप्राय प्रायः काले रंग से सजाए हुए प्राप्त होते हैं। यदा कदा सफेद एवं हरे रंगों का भी प्रयोग किया गया है। त्रिभुज वृत्त वर्ग आदि ज्यामितीय आकृतियों, पीपल की पत्ती, खजूर, ताड़, केला आदि वनस्पतियों, वृषभ, हिरण, बारहसिंगा आदि पशुओं, मोर, सारस, बत्तख आदि पक्षियों तथा मछली का चित्रण विशेष लोकप्रिय था। उत्कीर्ण अलंकरण अत्यल्प संख्या में मिलते हैं। प्रमुख पात्र प्रकारों में साधारण तस्तरियां, बेलनाकार बहुल छिद्रित पात्र, नुकीले आधार वाले चषक, जामदानी, लंबे आकार के मर्तवान, साधारण थालियां, हत्थेदार प्याले, कलश, घड़े, मटके, नात, तसले, घुंडीदार ढक्कन आदि हैं। जामदानी, नुकीले आधार वाले चषक और छिद्रित पात्र सैंधव सभ्यता के विशिष्ट मृदभांड हैं। अन्य कलात्मक वस्तुएं, सिंधु घाटी के लोगों ने छोटी छोटी कलाकृतियों का भी निर्माण किया था। आभूषण अलंकरण प्रसादन एवं गृहोपयोगी वस्तुओं का इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है। सोने चांदी के हार, कंगन, अंगूठी आदि आभूषण कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चूड़ियां, नुपुर आदि आभूषण भी मिलते हैं, जिनमें निर्माताओं ने अपनी कलात्मक अभिरुचि का परिचय दिया है। केश विन्यास में काम आने वाली पीने और कंघियां मिली हैं। प्रस्तर एवं तांबे तथा कांस्य धातु के बने हुए गृहोपयोगी उपकरण भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता की वास्तुकला प्रस्तर एवं कांस्य मूर्तियों, मिट्टी की मूर्तियों, मुहरों, मनकों आदि के संक्षिप्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कला के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के लोगों का उल्लेखनीय योगदान है। सौंदर्य एवं तकनीक की दृष्टि से सिंधु सभ्यता की कला का भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक संगठन। सिंधु सभ्यता का प्रसारक क्षेत्र अत्यंत व्यापक था, किंतु नगर नियोजन और बस्तियों के निर्माण में किंचित क्षेत्रीय अंतर के होते हुए भी कुल मिलाकर प्रायः एकरूपता देखने को मिलती है। पात्र परंपरा, उपकरण निर्माण, बाट एवं माप आदि के संदर्भ में भी मानकीकरण एवं समरूपता दृष्टिगोचर होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा आदि पुरास्थलों पर पश्चिम में दुर्ग तथा पूर्व दिशा में नगर की स्थिति से सिंधु सभ्यता में सुदृढ़ प्रशासन तंत्र के अस्तित्व का संकेत मिलता है। प्रारंभ में विद्वानों ने इस सभ्यता के विभिन्न पक्षों को एकरूपता पर अत्यधिक बल दिया था, किंतु नवीनतम अनुसंधानों से यह तथ्य उजागर हुआ है कि इस सभ्यता में कुछ स्थानीय विभिन्नताएं भी थी। पृष्ठ संख्या 401। प्रत्यक्ष प्रमाणों का अभाव होते हुए भी यह अनुमान करना संभवतः बहुत असंगत नहीं होगा कि सिंधु सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता का प्रशासन हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नामक नगरों की दो राजधानियों में होता था। सिंधु सभ्यता का राजनीतिक संगठन बहुत कुछ समकालिक सुमेरिया सभ्यता की तरह का था। मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता में नगर राज्यों का संचालन सूत्र पुरोहित शासकों के हाथ में था और संपूर्ण भूमि मंदिरों की संपत्ति थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से लगभग 640 किमी की दूरी पर स्थित थे। राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी प्राचीन दृशद्वती के किनारे पर स्थित कालीबंगा नामक सैंधव नगर अपने क्षेत्रफल तथा अभिन्यासात्मक संरचना की दृष्टि से हड़प्पा मोहनजोदड़ो से टक्कर लेता हुआ प्रतीत होता है। संभव है कि यह एक तीसरा महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगर रहा हो। स्टुअर्ट पिगट नामक विद्वान का विचार है कि सिंधु सभ्यता के प्रशासन का संचालन हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में स्थित दो राजधानियों से उसी तरह होता रहा होगा जैसा कि ऐतिहासिक काल में कुषाण शासन के समय उत्तर में पुरुषपुर पेशावर एवं दक्षिण में मथुरा से प्रशासन का संचालन होता था। नवी शताब्दी में मुल्तान और मंसूरा नामक राजधानियों से संचालित अरब शासकों की शासन प्रणाली में मार्टिमर व्हीलर ने तुलना किया था। व्हीलर लिखते हैं, सत्ता का स्रोत कोई भी क्यों न रहा हो, उसमें प्रमुखता संभवतः धर्म को ही प्राप्त थी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के शासक देश तथा राजधानी का उन्हीं तरीकों से शासन चलाते थे जिनसे सुमेर तथा अक्काद के समकालिक शासक प्रशासन संचालित करते थे। सामाजिक संगठन। सिंधु सभ्यता में अनेक नगर, कस्बे तथा गांव में रहे होंगे। नगरों के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु कस्बों एवं गांवों के संबंध में जानकारी का अभाव है। तत्कालीन सामाजिक संगठन के विषय में कुछ अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त सैंधव शिल्प कला से संबंधित उपलब्ध पुरावशेषों एवं उपकरणों के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों में विभाजित रहा होगा। रक्षा प्राचीर से घिरे हुए विशिष्ट सुविधाओं से युक्त हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा आदि के दुर्ग निसंदेह विशेषाधिकारों से संपन्न व्यक्तियों अथवा शासक वर्ग के लोगों के निवास से संबंधित रहे होंगे। इस बात की संभावना व्यक्त की गई है कि दुर्ग में निवास करने वाले लोग पुरोहित वर्ग के थे जो संभवतः शासक भी थे। नगर क्षेत्र में व्यापारी, अधिकारी, सैनिक एवं शिल्पी रहते थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के नगर क्षेत्र में व्यापारी, अधिकारी, सैनिक एवं शिल्पी रहते थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के नगर क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं थे, किंतु पृष्ठ संख्या 402। कालीबंगा एवं लोथन आदि पुरास्थलों से जो साक्ष्य मिले हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि नगर क्षेत्र भी दुर्ग की तरह किलेबंदी की दीवार से सुरक्षित थे। कृषक, कुंभकार, बढ़ई, नाविक, सोनार, मनके एवं मुहरे बनाने वाले शिल्पी, जुलाहे तथा श्रमिक सेंधो समाज के अन्य वर्ग रहे होंगे। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि नगरों के कतिपय मकानों की रूपरेखा के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि इस सभ्यता में दास प्रथा का भी प्रचलन था। सिंधु घाटी के निवासी खाने पीने वस्त्र एवं आभूषण के शौकीन थे। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। आभूषण सोने चांदी की माणिक्य के बनाए जाते थे। हाथी दांत तथा शंख का उपयोग अलंकरण तथा चूड़ियां बनाने के लिए किया जाता था। उत्खनन से कब्रों में मानव कंकालों के साथ दफनाए हुए तांबे के दलपर तथा हाथी दांत की बनी हुई कंघियां मिली हैं। गरीब लोग शंख, सीप एवं मिट्टी के बने हुए आभूषण पहनते थे। पासे का खेल और नृत्य उसके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव तथा समारोह भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। आर्थिक जीवन। नगरीकरण सैंधव सभ्यता के स्वरूप की मुख्य विशेषता थी। नगरीकरण विकसित एवं जटिल आर्थिक संगठन का परिचायक है। कृषि पशुपालन के अतिरिक्त शिल्प और व्यापार सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार थे। स्थानीय उपभोग से अधिक पैदावार लेने वाली उन्नत एवं कारगर कृषि के द्वारा ही नगरवासियों के भरण पोषण के लिए अनाज एवं विभिन्न शिल्पियों के लिए कच्चा माल सुलभ होता रहा होगा। सिंधु घाटी की उर्वरा भूमि खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त थी। नदियों के जलमार्गों एवं सड़कों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापारिक क्रियाकलाप होते रहे होंगे। मोहरों तथा एक जैसी बाट माप प्रणाली का भी व्यापार के विकास में योगदान था। कृषि सिंधु सभ्यता के आर्थिक संगठन में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई उपजाऊ जलोढ़क दोमट मिट्टी कृषि कार्य के लिए अत्यंत उपयुक्त थी। कृषि कार्य में प्रस्तर एवं कांस्य धातु के बने हुए उपकरणों तथा औजारों का उपयोग किया जाता था। डीडी कौशाम्बी आदि विद्वानों ने ऐसी संभावना प्रकट किया था कि सैंधव सभ्यता के कृषक हाल के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। वे संभवतः नुकीले कुदाल से खेती करते थे। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि कालीबंगा के प्राक सैंधव स्तरों से हल से जुते हुए एक खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के वर्तमान चोलिस्तान, भूतपूर्व बहावलपुर रियासत के विकसित हड़प्पन पुरास्थलों के अन्वेषण के फलस्वरूप मिट्टी के बने हुए खेत जोतने में पृष्ठ संख्या 403, चित्र 24, बनावली मिट्टी का हल, सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, प्रयुक्त हल के खिलौने के टुकड़े के टूटे हुए अवशेष मिले हैं। भारत के हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में स्थित बड़ावली के उत्खनन के फलस्वरूप विकसित हड़प्पा संस्कृति के स्तर से मिट्टी का बना हुआ एक खिलौना हल सही सलामत हालत में मिला है, जो बिल्कुल हल जैसा है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि सैंधव सभ्यता के काल में हल का प्रयोग अज्ञात था, युक्तियुक्त एवं संगत नहीं लगता है। सैंधव सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। इनके अतिरिक्त मटर, सरसों, तिल एवं कपास की भी खेती की जाती थी। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित लोथल नामक पुरास्थल से धान तथा बाजरे की खेती, रोजदी से राखी रागी के विषय में जानकारी मिली है। सिंधु सभ्यता के प्रसार क्षेत्र में स्थित किसी भी पुरास्थल के उत्खनन से नहर द्वारा सिंचाई के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल की तुलना में सिंधु सभ्यता के काल की जलवायु अधिक नम थी। किसी कार्य के लिए वर्षा के जल के अतिरिक्त जलाशयों तथा कुओं की पानी का उपयोग किया जाता था। मिस्र एवं मेसोपोटामिया की अपेक्षा सिंधु सभ्यता के प्रशासन तंत्र की भूमिका सिंचाई के साधनों के विकास कार्य में संभवतः नगण्य थी। सिंधु सभ्यता के व्यापार वाणिज्य संबंधी क्रियाकलापों ने निश्चय ही कृषि कार्य में लगी उत्पादक शक्तियों को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न उपजाने के लिए प्रेरित किया होगा। प्रमुख नगरों में स्थित विशाल अन्नागारों में खाद्यान्न संग्रहित किया जाता था। कृषि व्यवस्था के संगठन में इन अन्नागारों का विशेष महत्व रहा होगा, जिनके साक्ष्य अभी तक हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थलों से ज्ञात हो चुके हैं। अनाज संभवतः कर के रूप में संग्रहित होता रहा होगा। पृष्ठ संख्या 404। हड़प्पा के अन्नागारों में के समीप ही अनाज की सफाई, कुटाई, पिसाई आदि के चबूतरे मिले हैं और मजदूरों के निवास के लिए बनी हुई श्रमिक बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से आटा पीसने की चक्कियां नहीं मिली हैं। अनाज को ओखली में कूटकर अथवा सिल बट्टे द्वारा पीसकर आटा बनाया जाता रहा होगा। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के दो पार्ट मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों तथा मुहरों पर पेड़ पौधों का अंकन मिलता है। पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला आदि पेड़ पौधों का इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है। इनमें से अधिकांश पेड़ पौधे संभवतः उगाए जाते रहे होंगे। ये सभी स्थानीय बस्तियां थी। पशुपालन सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण आधार था। डीलदार एवं बिना डील वाले बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे, खच्चर और सुअर आदि प्रमुख पालतू पशु थे। हाथी का पालन भी संभवतः प्रारंभ हो गया था। ऊंट और घोड़े के पालन का प्रश्न विवादास्पद है। कृषि कार्य एवं बोझा ढोने के लिए पालतू पशुओं का उपयोग प्रमुख रूप में किया जाता होगा। पशुओं का महत्व मांसिक खाल तथा बाल एवं ऊन के लिए भी था। शिल्प एवं उद्योग धंधे, सूत की कताई और सूती वस्त्रों की बुनाई के धंधे अत्यंत विकसित रहे होंगे। मोहनजोदड़ो से मजीठ से लाल रंगे हुए कपड़े के अवशेष चांदी के बर्तन में पाए गए थे। तांबे के दो उपकरणों में लिपटा हुआ सूती कपड़ा एवं सूती धागे भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर सूती वस्त्र की छाप मिली है। इसी पुरास्थल से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ एक उस्तरा भी मिला है। लोथल से प्राप्त मुद्रांकों सीलिंग्स पर सूती वस्त्रों की छाप मिली है। आलमगीरपुर से प्राप्त मिट्टी के एक नाद पर बुने हुए वस्त्र के निशान मिले हैं। कताई बुनाई में प्रयुक्त मिट्टी, कांचली मिट्टी और शंख आदि के बने हुए दो एवं तीन छेद वाले तकुए सैंधव वस्तुओं से के प्रायः अधिकांश घरों से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की प्रस्तर मूर्ति तिपतिया अलंकरण युक्त शाल ओढ़े हुए है। स्पष्टतः वस्त्रों पर कढ़ाई भी होती थी। मेसोपोटामिया को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र संभवतः प्रमुख व्यापारिक सामग्री रही होगी। मिट्टी के बर्तन बनाने का शिल्प भी अत्यंत विकसित एवं प्रचलित था। नगरों में ईंटें बनाने का कार्य भी महत्वपूर्ण शिल्प के रूप में चलन में था। ईंटों के भट्ठे शहरों के बाहर स्थित होते थे। सिंधु सभ्यता के नगरों के ध्वंसावशेषों के उत्खनन से प्राप्त सोने चांदी के आभूषणों, तांबे एवं टिन के बने बर्तनों, उपकरणों तथा औजारों से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग धातु की बंद ढलाई और मधुच्छिष्ट लास्ट वाक्स ढलाई की तकनीक से भलीभांति परिचित थे। आभूषणों के निर्माण में स्वर्णकार अत्यंत निपुण एवं दक्ष थे। शंख, सीप एवं हाथी दांत से पृष्ठ संख्या 405 विविध प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। चानूदड़ों तथा लोथल से मनके बनाने वाले कारीगरों की कार्यशालाओं के साक्ष्य मिले हैं। सीलखड़े, चर्ट, फेंस, तांबे पर मिट्टी के आयताकार मुहरे बनाने का शिल्प भी अत्यंत विकसित था। इन मुहरों पर देवता, मानव, पशु एवं पौराणिक संयुक्त आकृतियां तथा पेड़ पौधे बने हुए मिलते हैं। चित्राक्षर लिपि में छोटे छोटे अभिलेख भी इन पर उत्कीर्ण हैं। उत्कीर्ण शिल्प की दृष्टि से ये उल्लेखनीय है। मिट्टी, धातु एवं पत्थर की मूर्तियां बनाने की कला में दक्ष शिल्पी भी रहे होंगे। व्यापार एवं वाणिज्य, सिंधु सभ्यता के आर्थिक संरचना में व्यापार एवं वाणिज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के विश्लेषण से यहाँ की नाव तौल की प्रणाली, यातायात के स्वरूप एवं साधन तथा व्यापार वाणिज्य पर समुचित प्रकाश पड़ता है। माप का व्यापारिक क्रियाकलापों में विशेष महत्व था। सिंधु सभ्यता के टीलों की खुदाई से अनगिनत संख्या में मिले एक निश्चित माप तौल के बाटों ने व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाया होगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा आदि से उपलब्ध बाटों की तौल का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 208, 320 आदि था। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। बाट बनाने के लिए भूरे रंग के चर्ट, चूना पत्थर, सीलखड़ी, स्लेट पत्थर और चालसेडनी आदि पत्थरों का उपयोग किया गया था। बात घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार एवं ढोलाकार प्रायः मिले हैं। मिट्टी तथा धातु के बने हुए तराजू के पलड़े अपेक्षाकृत कम संख्या में मिले हैं। ऐसी संभावना है कि बांस आदि के टिकरी नुमा पलड़ों का प्रचलन रहा होगा। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ तथा लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक एक पैमाना स्केल मिला है। कांस्य काल की प्राचीन विश्व की अन्य समकालिक सभ्यताओं की ही भांति सिंधु सभ्यता में भी सिक्कों का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर शिल्पियों एवं व्यापारियों द्वारा अपनी मुहर की छाप लगाने की प्रथा थी। लोथल से प्राप्त अनेक विशिष्ट मुद्रांकों सिलिंग्स से इस बात की पुष्टि होती है। इन मुद्रांकों पर एक और संध लिपि से युक्त मुहर की छाप है तथा दूसरी ओर भेजे जाने वाले माल का निशान अंकित है। यातायात के साधनों के विषय में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मैदानी क्षेत्र में मूलतः दो पहिए और चार ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी अथवा भैंसा गाड़ी का उपयोग माल ढोने के लिए किया जाता रहा होगा। ऐसा निष्कर्ष मिट्टी और कांस्य धातु की बनी खिलौना गाड़ियों के आधार पर निकाला जा सकता है। भार ढोने के लिए हाथियों और पहाड़ी क्षेत्रों में खच्चरों तथा बकरों आदि का उपयोग होता रहा होगा। पृष्ठ संख्या 406, चित्र 25, मोहनजोदड़ो, मिट्टी की बैलगाड़ी, सौजन्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित नाव के चित्र एवं लोथल से प्राप्त मिट्टी की बनी हुई खिलौना नाव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मस्तूलदार नावों का उपयोग आंतरिक एवं विदेशी व्यापार के लिए होता था। सिंधु चित्र 26, मोहनजोदड़ो, नाव, सौजन्य, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। पृष्ठ संख्या 407, सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल के उत्खनन से ज्ञात गोदी अथवा बंदरगाह के साक्ष्य से भी होती है। लोथल की गोदी आयताकार 218x36 मीटर थी। नावों के रुकने के लिए नौका घाट तथा पत्थर के लंगर आदि के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। यद्यपि कुछ विद्वानों चित्र 27 लोथल गोदी बंदरगाह सौजन्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लोथल की गोदी को तालाब निरूपित किया है, तथापि अधिकांश पुरातत्ववेत्ता इस बात से सहमत है कि लोथल में व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए एक गोदी थी। पश्चिम भारत में मकरान के तटवर्ती क्षेत्रों से ज्ञात सिंधु सभ्यता की बस्तियां संभवतः समुद्र तट व्यापारिक पड़ाव के रूप में स्थित बंदरगाह थी। भारत में गुजरात के सौराष्ट्र तट पर किम नदी के किनारे पर स्थित भगत राव नर्मदा तट पर मेघम, हिरण्य नदी के किनारे प्रभास पाटन भोगावा एवं साबरमती के संगम पर स्थित लोथल और पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान के मकरान के समुद्र तटीय क्षेत्र में दस्त नदी के मुहाने पर स्थित सुत गाकेन डोर, शादी कौर के मुहाने पर सोतका कोह तथा बिंदार नदी के तट पर स्थित बालाकोट व्यापारिक केंद्रों के रूप में विद्यमान रहे होंगे। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आंतरिक व्यापार अत्यंत विकसित अवस्था में था। कृषि उत्पादों का तैयार माल से विनिमय प्रायः नगरों एवं अन्य व्यापारिक केंद्रों पर होता था। गांवों से खाद्य सामग्री आती थी और उसके बदले में सूती वस्त्र एवं धातु की बनी हुई वस्तुएं, उपकरण, बर्तन एवं आभूषण आदि बदले में दी जाती थी। पृष्ठ संख्या 408, उद्योग धंधों एवं शिल्प कार्यों के लिए कच्चा माल गुजरात, सिंध, राजस्थान, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान आदि के आंतरिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अफगानिस्तान, सोवियत, तुर्कमानिया, ईरान तथा मेसोपोटामिया आदि से मंगाया जाता था। मनके बनाने के लिए गोमेद गुजरात से मंगाया जाता था। फ्लिंट एवं चर्ट के प्रस्तर खंड पाकिस्तान के सिंधक क्षेत्र में स्थित रोड़ी तथा सखर की खदानों से प्रायः अधिकांश सिंधु नगरों को ब्लेड एवं फलकों के निर्माण के लिए भेजे जाते थे। तांबे का स्रोत राजस्थान के झुंझुन जिले में स्थित खेतड़ी की खाने थी। खेतड़ी क्षेत्र में स्थित गणेश्वर के उत्खनन से हड़प्पन प्रकार के बाड़ों की खोज महत्वपूर्ण है, खेतेड़ी के अतिरिक्त बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान से भी संभवतः तांबा प्राप्त किया जाता था। सोना कर्नाटक में स्थित कोलार की खानों से मिलता था। सिंधु सभ्यता के बाह्य व्यापार के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों का मध्य एवं पश्चिम एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अफगानिस्तान सोवियत रूस के दक्षिण तुर्कमानिस्तान फारस की खाड़ी क्षेत्र में स्थित देशों ईरान और इराक मेसोपोटामिया के साथ सैंधव नगरों के व्यापारिक संपर्क के प्रमाण मिले हैं। लाजावर्द एवं चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। अफगानिस्तान का बदख्शां क्षेत्र लाजावर्द के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान के सोर्तगुई नामक पुरास्थल के उत्खनन से सिंधु सभ्यता के पुरावशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता का अफगानिस्तान के इस क्षेत्र में अन्यथा प्रसार नहीं मिलता है, इसलिए सोर्तगुई को मध्यवर्ती व्यापारिक बस्ती माना जा सकता है। सोवियत पुरातत्वविदों को सिंधु सभ्यता और दक्षिण तुर्कमानिस्तान की बस्तियों के बीच व्यापारिक संपर्क के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फारस की खाड़ी क्षेत्र में स्थित देश मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्र के रूप में पुनर्निर्यात आयात का कार्य करते थे। डेनमार्क के पुराविदों के नेतृत्व में बहरीन द्वीप में हुए उत्खनन से एक ऐसे उपनिवेश के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं जिसकी संस्कृति पर सैंधव एवं मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं का प्रभाव स्पष्ट है। बहरीन द्वीप में रस अल कला और कुवैत के समीप स्थित फैलका नामक पुरास्थलों से सीलखड़ी की जो वृत्ताकार मुहरें मिली हैं उनमें सैंधव लिपि में लेख उत्कीर्ण है, किंतु उनकी बनावट और डिजाइन में भेद भी स्पष्ट है। ऐसी ही एक वृत्ताकार मुहरें लोथल से मिली हैं, जो दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संपर्क पर प्रकाश डालती हैं। ईरान से संगशब अथवा हरिताश्म फिरोजा टीन तथा चांदी आयात की जाती थी। सिंधु सभ्यता के नगर इन क्षेत्रों को सूती वस्त्र हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं एवं इमारती लकड़ी आदि निर्यात करते थे। मेसोपोटामिया वर्तमान इराक की सुमेरिया सभ्यता के साथ सिंधु सभ्यता के घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया से व्यापारिक संपर्क स्थल एवं समुद्री पृष्ठ संख्या 409 मार्ग दोनों से ही रहा होगा। सिंधु सभ्यता एवं मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्रों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। जलमार्ग से होने वाले व्यापार में पश्चिमी भारत में समुद्र तटीय सैंधव नगरों, मकरान के तटवर्ती बंदरगाह नगरों एवं व्यापारिक वस्तुओं का उल्लेखनीय योगदान था। बहरीन द्वीप के पुरास्थलों से प्राप्त सैंधव पुरावशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के व्यापारियों के मध्य होने वाले व्यापार में यहाँ के व्यापारी बिचौलिए का काम करते थे। सिंधु और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच होने वाले व्यापारिक क्रियाकलापों से संबंधित साक्ष्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक पुरातात्विक साक्ष्य, दो अभिलेखीय साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत सैंधव नगरों से आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया जा सकता है। निर्यात की जाने वाली सामग्री में सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी, मसाले, हाथी दांत एवं पशु पक्षी आदि रहे होंगे। ऊर, कीश, लगश, निपुर, तेल, अस्मर, टेपे, गावरा, हमा आदि मेसोपोटामिया सभ्यता के नगरों से सिंधु सभ्यता की लगभग एक दर्जन मुहरे मिली हैं। ये मुहरें व्यापार के माध्यम से वहां पहुंची होंगी। विदेशों के साथ सिंधु सभ्यता के नगरों के व्यापारिक संबंध के परिणाम स्वरूप सिंधु सभ्यता के नगरों में संगठित व्यापारी वर्ग का संभवतः उदय हुआ होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापारी अपने माल को गांठों के रूप में भेजते थे, जिस पर वे अपनी मुहर की छाप अंकित करते थे। रेखांकित करकेतन के मन के जड़ाऊ काम वाले शिव तथा हड्डियों द्वारा निर्मित वृक्क के आकार के मनके आदि सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरावशेष हैं, जो व्यापार के माध्यम से मेसोपोटामिया पहुंचे। मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के नगरों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हरिताभ रंग का क्लोराइड प्लास्टर का टुकड़ा, जिस पर चटाई की बुनावट जैसी डिजाइन बनी है, उल्लेखनीय है। हड़प्पा से जो खानेदार मनके मिले हैं वे भी मेसोपोटामिया से संभवतः आयात किए गए होंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुहरे तथा लोथल से प्राप्त सीलखड़ी की वृत्ताकार बटन के आकार की मुहरें व्यापारिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप सिंधु सभ्यता के इन नगरों तक पहुंची होंगी। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध के विषय में अभिलेखी साक्ष्य भी उल्लेखनीय है। सुमेरिया के शासन सारगोन 2371 से 2316 ईसा पूर्व के काल की मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के उर और अन्य नगरों के व्यापारी दिलमुन अथवा तिलमुन, मगन तथा मेलुहा आदि से विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं का पृष्ठ संख्या 410 आयात करते थे। दिलमुन से आयातित वस्तुओं में सोना, चांदी, ताबा, हाथी दांत की कंघी, लाजावर्द, माणिक्य के मनके, इमारती लकड़ी और मोती आदि का उल्लेख मिलता है। मगन से तांबा मंगाया जाता था। मेलुहा से मेसोपोटामिया सभ्यता के नगरों द्वारा आयोजित वस्तुओं में आबनूस एवं अन्य इमारती लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी, लाजावर्द, माणिक्य के मनके, हाथी दांत और हाथी दांत की बनी हुई रंगीन कंघी, पशु पक्षी आभूषण, अंचन तथा मोती आदि की गणना की जा सकती है। दिलमुन, मगन एवं मेलुहा की निश्चित पहचान करना सरल कार्य नहीं है। MEL मेलोवा और ब्रिजेट अल्विन आदि ने दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप से किया है, जहां से संदव उद्भव की कतिपय मुहरे एवं पुरावशेष डेनमार्क के पुराविदों को उत्खनन के फलस्वरूप मिले हैं। मिट्टी की पट्टियों पर अंकित सुमेरिया अभिलेखों में दिलमुन की को सूर्योदय का क्षेत्र, साफ सुथरे नगरों वाला स्थान और हाथियों का देश कहा गया है। तांबे के स्रोत के रूप में विख्यात मगन का समीकरण प्रायः ओमान अथवा दक्षिणी अरब के मस्कट या किसी अन्य क्षेत्र से किया जा सकता है। मगन की पहचान पाकिस्तान के मकरान क्षेत्र से भी की जा सकती है। मेलुहा को सिंध अथवा सिंध क्षेत्र में स्थित मोहनजोदड़ो माना जा सकता है। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि अक्काद के शासक सारगोन के शासनकाल में शासन की ओर से मेलुहा की भाषा का अनुवाद करने वाले अनुवादक की व्यवस्था की गई थी। दिलमुन, मगन एवं मेलुहा से आयोजित वस्तुओं की सूची में कपास एवं सूती वस्त्रों का उल्लेख न होने से कुछ विद्वानों ने यह शंका प्रकट की है कि उपर्युक्त सभी व्यापारिक वस्तुएं अफ्रीका से आयात की जाती रही होंगी। ऐसी स्थिति में ये तीनों स्थान अफ्रीका महाद्वीप में कहीं होने चाहिए, लेकिन अधिक संभावना इसी बात की है कि इन नामों का आशय सिंधु सभ्यता की बस्तियों से ही रहा होगा और उपर्युक्त वस्तुएं सिंधु सभ्यता के नगरों से आयात की जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ सिंधु सभ्यता के नगरों का विशेष व्यापारिक संपर्क सारगोन काल में था, क्योंकि इस काल के स्तरों से सैंदो मुहरे सर्वाधिक संख्या में मिली हैं। इस प्रकार 2400 ईसा पूर्व के लगभग यह संपर्क स्थापित हुआ होगा। WF अल्ब्राइट नामक विद्वान का यह मत है कि 1750 ईसा पूर्व के लगभग व्यापारिक संपर्क समाप्त हो गया रहा होगा।